की ये प्रोग्राम है पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक का
और मैं हूं वकार मुस्तफा। सामईन, मकामी हुकूमतें किसी भी रियासती निज़ाम में बहुत अहमियत की हामिल होती हैं क्योंकि इन्हीं से लोगों के इक्तदार और अपने मसाइल के हल में शिरकत यकीनी बनती है। इसी अहमियत के पेश नज़र पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने पिछले दिनों मकामी हुकूमतों में ख्वातीन की शिरकत की हौसला अफजाई और मकामी हुकूमतों के कवानीन का तज्जिया और तरामीम के असरात के उन्वानात के तहत बलूचिस्तान के हवाले से क्वेटा और सिंध के हवाले से कराची में वर्कशॉप्स का एहतमाम किया। पाकिस्तान कमीशन बरा इंसानी हुकूक के जॉइंट डायरेक्टर हुसैन नकी अगराज व मकासद का इहाता करते हुए कुछ यूं कहते हैं।
ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो उसका जो फ्रेमवर्क है यानी जिस दायरे में वो काम करता है वो इंसानी हकूक का आलमी मंशूर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हम ख़ास तौर पे ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में हुक्मरानी का जो इख्तियार है वो निचली सतह तक जाए और उसमें ख्वातीन हिस्सा लें तो वो एक इंतहाई बेहतर पाकिस्तान बन सकेगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की दफ़ा 21 है ये, उसके तहत हर शख्स को अपने मुल्क की हुकूमत में बराह रास्त या आज़ादाना तौर पर मुंतखब किए हुए नुमाइंदों के ज़रिए हिस्सा लेने का हक है। एक तरीके से अखलाकी ज़िम्मेदारी है तमाम ममालिक की जो अक्वामे मुत्तहिदा के रुकन बनते हैं कि वो इनकी पासदारी करें। अब पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन ने GSP स्टेटस दिया है, यानी वहाँ आपका सामान जो है ख़ास तौर से टेक्सटाइल ये एक्सपोर्ट होती है तकरीबन नो ड्यूटी के ऊपर, और जब आपने उसको साइन किया यूरोपियन यूनियन के साथ माहदे तो फिर आपके ऊपर 28 ऐसे कन्वेंशंस हैं, ऐसे मीसाक हैं अक्वामे मुत्तहिदा के जिनकी पासदारी आप पे लाजिम हुई। उसमें लोकल गवर्नमेंट के क़याम का हक भी शामिल है। अगर लोकल गवर्नमेंट किसी मुल्क में न बने तो उसको यूरोपियन यूनियन GSP स्टेटस नहीं देगा। पाकिस्तान में जो कौमी सतह पे मुंतखब हो जाए वो ये नहीं चाहता कि सूबाई सतह पे इख्तियार मुंतकिल करे, और जो सूबाई सतह पे मुंतखब हो जाए वो ये नहीं चाहता कि वो मकामी सतह पे इख्तियार मुंतकिल करे। हालांकि आइनी हक भी है और कानूनी ज़िम्मेदारी भी है और बैनुल अक्वामी आपके माहदे के तहत अब जिसके तहत आपने यूरोपियन यूनियन से GSP स्टेटस हासिल किया कि आप बग़ैर ड्यूटी के उनको सामान एक्सपोर्ट करें, तो ये आपने तमाम हक हासिल किए लेकिन आपने ये हक डिवॉल्व नहीं किया। इस वक्त जो कानून मौजूद है और जो बना था और जो इससे पहले कवानीन बने हैं उनके मुताबिक और उसमें जो तरामीम हुई उन तरामीम का क्या असर हुआ, हमारी नज़र में उन तरामीम का हुकूमत के ऊपर लोकल गवर्नमेंट बनने के बजाय वो बल्दियाती इदारा भी नहीं रहा है।
क्वेटा में मुनाकिदा वर्कशॉप की रिसोर्स पर्सन जलीला हैदर एडवोकेट का कहना था कि बल्दियाती इदारों में ख्वातीन की शमूलियत यकीनन बहुत बड़ा इनकलाब है, मगर ख्वातीन की नुमाइंदगी को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि इन्हें इस निज़ाम में भी मर्दों का मोहताज बनाया गया है। उन्होंने वर्कशॉप में शरीक ख्वातीन काउंसलर्स को मकामी हुकूमतों के कानून के खदोखाल से आगाह किया। वर्कशॉप में शरीक काउंसलर्स साइमा बलोच, रिमशा, सानिया बलोच, महनूर और फजीला मोहम्मद खान ने इस बात पर जोर दिया कि ख्वातीन को अपने हुकूक हासिल करने के लिए तालीम और हुकूक से आगाही का एहतमाम करना चाहिए। प्रोफेसर शाह मोहम्मद ने लेक्चर देते हुए कहा कि मकामी हुकूमतें रियासती ढांचे का अहम अंसर होती हैं जो अवाम में निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली का अहम जरिया मानी जाती हैं, इसलिए इनकी मजबूती रियासत की मजबूती है। रहीम काकड़ अपोजिशन लीडर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन क्वेटा ने कहा कि देही इलाकों के बल्दियाती निजाम से वाबस्ता लोगों को ये निजाम समझने में इस वर्कशॉप से आसानी होगी और इससे इन्हें ये भी मालूम होगा कि इनके अख्तियारात क्या हैं और क्या नहीं हैं। उनका कहना था कि मेयर और डिप्टी मेयर और मेंबर काउंसिल के पास कोई इख्तियार नहीं है, तमाम इख्तियारात अफसरशाही के पास हैं। मीर वजीर खान मेंगल जो बल्दियाती काउंसिलर हैं नुश्की के, उनका कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात मौजूद हैं, मगर बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत वो इख्तियारात बल्दियाती इदारों को मुंतकिल नहीं कर रही। ताहिर हुसैन एडवोकेट वाइस चेयरमैन HRCP का कहना था कि जिन मुमालिक ने तरक्की की मनाजिल तय की हैं उनकी तरक्की की बुनियादी वजूहात में से एक अहम वजह यह है कि वहां की हुकूमतों ने इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल कर दिया है। मोहम्मद करीम बारोजई का कहना था कि मालियाती और इंतजामी तौर पर तमाम इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले किए जाएं ताकि मकामी सतह पर लोगों को दरपेश मसाइल बेहतर अंदाज में हल हो सकें। काउंसिलर अब्दुशकूर ने कहा कि काउंसिलर का तालीम याफ्ता होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर तालीम नहीं होगी तो काउंसिलर अपने हुकूक हासिल नहीं कर सकता। मोहम्मद नासिर राही का कहना था कि बल्दियाती निजाम के एक्ट का उर्दू में तर्जमा तमाम यूनियन काउंसिलों के मुंतखब नुमाइंदों तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाए ताकि बल्दियाती नुमाइंदों को उनके इख्तियारात के मुतालिक बेहतर मालूमात हासिल हो सकें। हाजी मोहम्मद सईद के मुताबिक तमाम तरक्याती मंसूबों में बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों से मुशावरत की जाए, क्योंकि ये गांव और महल्ले की सतह से मुंतखब होकर आते हैं और इन्हें अवामी मसाइल से बेहतर जानकारी होती है। कराची में मुनाकिद होने वाली वर्कशॉप में तरबियती इदारे नीपा के साबिक सरबरा मीर जावेद इकबाल का कहना ये था,
आर्टिकल 140A के तहत 3-tier गवर्नमेंट लाजमी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जैसे ही आपका ये दो इलेक्शन हो उसके 120 डेज बाद या 90 डेज बाद जो है इलेक्शन कराना लाजिम था। फर्स्ट ईयर आती है तो वो सेकंड ईयर का इलेक्शन पे रिलेक्टेड होती है, उसको पावर ट्रांसफ़र करने के लिए। जब फेडरल गवर्नमेंट आती है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर नहीं देती, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है तो वो थर्ड ईयर जो म्यूनिसिपल या लोकल गवर्नमेंट होती है उनको पावर डिवॉल्व नहीं करते, ये क्या वजह है? इसके तहत लोकल गवर्नमेंट फॉर लोकल पीपल बनी थी। आपने एक टर्म भी सुनी थी बॉटम अप प्लानिंग, ये बॉटम अप प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो 2001 के एक्ट में दिया हुआ था, जो लोकल लोग हैं उनको अपने मसाइल का पता होता है और प्लानिंग जो है ऊपर से थोड़ी थोपी जाती है। बेसिक ऑब्जेक्टिव इस आर्टिकल का यही था कि लोकल गवर्नमेंट फॉर लोकल पीपल, कि वो आपकी नीड आइडेंटिफाई करें और ऑन द बेसिस ऑफ नीड आइडेंटिफिकेशन वो प्लानिंग करें और प्लानिंग करके उसको डेवलपमेंट साइट पे ले जाएं, काउंसिल से अप्रूव करके PC1 बनवाए, प्रोजेक्ट बनाए और उस प्रोजेक्ट को अचीव करें। मॉनिटरिंग का सिलसिला जो इसमें दिया हुआ था वो ज़्यादा पावर थी 2001 के, क्योंकि लोकल काउंसिलर की जिम्मेदारी ये थी कि अपने एरिया की हर उस प्रोजेक्ट की जो गवर्नमेंट रन कर रही है उसकी मॉनिटरिंग थी। इसमें ऐसी क्या खराबी थी कि आप इतनी बड़ी अमेंडमेंट लेके आए और उसके बाद आपने चले इलेक्शन करवा दिया, सब कम से कम इख्तियारात तो दें, ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। द सिंध गवर्नमेंट एक्ट 2000 हैज बीन पास्ड बाय द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध एंड इनएक्टेड ऑन, ये कब से वो हुआ, 29/8/2013 से। इन कराची देयर विल बी वन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, 5 डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड 1 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर द रूरल एरिया ऑफ कराची। देयर विल बी 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दैट इज हैदराबाद, सक्कर एंड लाड़काना। द सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 एक्सक्लूसिवली डील लोकल गवर्नमेंट म्युनिसिपल फंक्शन एंड इट हैज नो कंसर्न विद द रेवेन्यू, पुलिस और एनी अदर डिपार्टमेंट। 2001 में क्या था कि आपके जितने फंक्शनरीज थे, जितने आपके डिपार्टमेंट्स थे, वो सारे डिवॉल्व होके लोकल लेवल पे आ गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गए थे। द लोकल काउंसिल एस्टैब्लिश अंडर द लॉ शैल बी बॉडी कॉर्पोरेट एंड शैल फंक्शन अंडर द प्रोविंशियल फ्रेमवर्क अंडर द लॉ लोकल गवर्नमेंट कमीशन। अब इन्होंने क्या किया है, कि ये सारी पावर्स डिपार्टमेंट को सेंट्रलाइज कर दिया, जो आपको 2001 के एक्ट में दिए गए थे, इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सबको पावर ले ली, बल्दियाती इदारे जितने थे लेकर इन्होंने एक कमीशन बना दिया। अब ये देखिए, द कमीशन शल कंप्राइज ऑफ टू मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, वन इज टू बी नॉमिनेटेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन, टू टेक्नोक्रेट्स टू बी नॉमिनेटेड बाई दी गवर्नमेंट, सेक्रेटरी लॉ एंड सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। तो अब वहाँ बताइए कि कहाँ इसकी वैल्यू होगी, जो अपोजिशन आपने एक मेंबर अगर उसको डाला है। द मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन इज टू बी इस्टेब्लिश अंडर द लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग लोकल काउंसलर्स। द मिनिस्टर फाइनेंस विल बी द चेयरमैन, द मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, टू मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी पीएनडी एंड लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शैल बी इट्स मेंबर। कोई प्रोजेक्ट्स बनाए, जब प्रोजेक्ट्स बनाकर फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लोकल पीपल, लोकल एरिया के लिए आपने बनाए, और जब वो आप काउंसिल से पास करवा कर प्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट को, तो ये जाएगा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में। ये जो फाइनेंस कमीशन है ये इतना पावरफुल है कि अगर वो प्रोजेक्ट पूरे भी काट के आपको वापस भेज दें तो दैट इज द फाइनल। बजाय इसके कि ये करते कि साहब ठीक है, ये एक मॉनिटरिंग बॉडी है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें कमी बेशी होती उस पर ऑब्जेक्शन लगाकर वापस भेजते काउंसिल में और अथॉरिटी काउंसिल को देते कि जी वो फाइनलाइज करें, और जो वो फाइनल कर दें वही लोगों की डिमांड होगी। द गवर्नमेंट शैल एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ द काउंसिल्स टू इंश्योर दैट देयर मेन एक्टिविटीज कम टू द प्रोविजन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट लॉज एंड इश्यूज डायरेक्शन टू काउंसिल्स फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ म्युनिसिपल लॉ ए कम्प्रीहेंसिव शेड्यूल ऑफ ऑफेंस एंड पेनल्टीज हैज बीन प्रोवाइडेड इन द लॉ। लोकल बॉडीज इलेक्शन विल बी कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन। इलेक्शन ऑफ मेयर एंड डिप्टी मेयर, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन शैल बी हेल्ड डायरेक्टली एंड फ्रॉम अमंग्स द इलेक्टेड काउंसलर, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड कैंडिडेट।
इस सूरत हाल में बेहतरी के लिए मीर जावेद इकबाल की सिफारिशात और तजावीज कुछ यूं थी।
ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं। इट इज प्रपोज दैट ऑल द डिपार्टमेंट विच वर डिवॉल्व इन 2001 SLGO मे बी रिस्टोर्ड इन सिन लोकल गवर्नमेंट एक्ट। हर 5 साल बाद या 10 साल बाद मास्टर प्लान होने चाहिए। ये आपको एक आउटलाइन बताता है कि जी यहाँ पे इतने घर होने चाहिए, रोड यहाँ से निकलनी चाहिए, मस्जिदें यहाँ होनी चाहिए, स्कूल यहाँ होने चाहिए, पार्क यहाँ होना चाहिए, समझे। जिसकी वजह से आप कहते हैं ये इंक्रोचमेंट हो गया, ये आप फिर उसके बाद कहते हैं ये एमिनिटी प्लॉट है, ये सारी चीज़ें जो है ये मास्टर प्लान में दी हुई होती हैं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये वापस किया जाए। ये एक कराची का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है। इस अथॉरिटी के मेंबर नॉमिनेट नहीं हुए मगर ये मिनिस्टर साहब के अंडर है। 2001 का था सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड, उसको जो है वो रिवाइव करें, उसको रिस्टोर करें, क्योंकि उसकी अफादियत बेइंतहा थी, मगर उस ज़माने में भी ये इतना इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, उसकी हालांकि इसकी फंडिंग भी थी। इट इज़ फर्दर प्रपोज दैट द फॉलोइंग डिपार्टमेंट एंड फंक्शन मे आल्सो बी प्लेस्ड अंडर मेयर फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। पुलिस सिस्टम, जो क्योंकि हमने तो पहले उसको वैसे क्वालिफाई कर दिया कि जो 2001 का आपका सिस्टम है उसको रिस्टोर किया जाए, उसमें पुलिस भी इसमें मेयर के अंडर थी, मगर अब क्योंकि नहीं है तो ये हमारी सजेशन है कि एटलीस्ट पुलिस को कर दिया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस भी मेयर के अंडर आना चाहिए, मेयर को पता है कि उसकी सिटी का क्या प्रॉब्लम है, रोड टूट रही तो वो बनवाता है, ठीक है। अगर उसको पता है कि पुलिस से कैसे काम लेते हैं, तो पिछली दफ़ा इनके कंट्रोल में, मेयर साहब के कंट्रोल में इन्होंने बनाने की कोशिश की थी सिटीजन कम्युनिटी पुलिस। मैंने सोचा हमें तो अपने काम निकालने हैं, तो हम ये करते हैं इसका नाम चेंज कर देते हैं, इनका वार्डन रख देते हैं, सिटी वार्डन, व्हाट डज इट मेक डिफरेंस। और मुझे आज तक याद है कि सिटी वार्डन की फंक्शंस ये थे कि सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करना, और वो इतना इफेक्टिवली करते थे। फिटनेस सर्टिफिकेट जो व्हीकल की है वो मेयर को दीजिए, मोटर व्हीकल टैक्स ये मेयर के अंडर होना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स। आज जो इतने मैस पैमाने पे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, हॉस्पिटल खुल गए हैं, वो किसको कैटर कर रहे हैं? वो आपके वोटर्स को कैटर कर रहे हैं। उन पे आपका क्या कंट्रोल है? फॉर एग्जांपल, मैं आपका वोटर हूँ, मैं अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में लेके जाता हूँ, वो जाके कहता है जी आप जो है वो जून जुलाई की भी फीस देंगे। क्यों भाई? एडमिशन तो अब हो रहा है। आप ट्रांसपोर्ट की जो फीस है वो भी उस वक्त से देंगे। क्यों भाई? हमने तो इस्तेमाल ही नहीं की। नहीं जी आप देंगे। अब बताइए इस पे किसका कंट्रोल है? मैं किसके पास जाऊँ? अगर आप लोगों की मॉनिटरिंग, मैं लोकल बॉडी के, लोकल रिप्रेजेंटेटिव के और मेयर के अंडर की बात कर रहा हूँ, या मेयर इज नॉट ओनली, जिससे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है उनकी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्या आप उनके अंडर में भी आएगा? ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो मनमानी ना करें। हॉस्पिटल में जो है वो आपकी मनमानी होती है, बंदा इमरजेंसी में आता है, किस किस तरीके से ब्लैकमेल करके पैसे लेते हैं, क्या कोई मॉनिटरिंग? क्या हम इंसान नहीं? फैमिली कोर्ट्स का है, और ये मेयर के अंडर दें ताकि वो कुछ अपने लोकल काउंसिल लेवल पे इसको इस्टेब्लिश करें, फर्दर डिवॉल्व करके, और उस हलके के जो हैं लोग उनको रिलीफ मिले इन छोटी छोटी चीज़ों पे, और उनका पैसा भी नहीं लगे। लास्ट मेरे ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस भी जो है ये भी ये मेयर के पास आना चाहिए।
इंसानी हकूक के कुछ पैगाम। अरी बजर गुलूकार है, सूफियाना कलाम इनकी शोहरत की वजह है।
जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के अजीम सूफी बुजुर्ग थे। रूमी का कहना है कि तुम्हारा काम मोहब्बत की जुस्तजू नहीं, बल्कि सिर्फ उन रुकावटों की शनाख्त करना है जो तुमने मोहब्बत के खिलाफ अपने गिर्द तामीर की हुई है।
हमारी धरती का जो असल पैगाम है मियां मोहम्मद बख्श साहब के कलाम में।
मैं एक बच्ची हूँ, मेरा और सब बच्चों का हक है तासब ना हो, तशद्दुद ना हो, जिंदगी महफूज और मैयारी हो, सोच मालूमात इजहार की आज़ादी हो, तालीम मिले ऐसी कि सीखे अमन से रहना, माहौल की हिफाजत करना और एहतराम इंसानी हुकूक का। प्रोग्राम बात हक की में FM 101 पर हफ्ता और इतवार की दोपहर 12:30 बजे पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक।
बरकत जमशेद एक अस्पताल में काम करते हैं। कहते हैं लोगों में बर्दाश्त कम हो गई है।
पहले लोग लाड भी पड़ते थे, कुछ देर बाद सुलह कर लेते थे, छोटी छोटी बातों में लोग एक दूसरे गले पड़ जाते हैं। सीढ़ियों में आ रहे हैं तो किसी ने कहा आपने कोनी लगा दिए तो गले पड़ जाते हैं।
ऐसा हर जगह है, सड़क पर, घर में, स्कूल में, दफ्तर में, फैक्ट्री में बर्दाश्त कम कम है। क्यों ना हम इख्तलाफ को लड़ाई में ना बदलें? क्यों ना पाकिस्तान को पुरम मुल्क बनाएं? पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक।
प्यारे बच्चों, मैं हूं जवाद अहमद। क्या आप स्कूल जाते हैं? नहीं, क्यों? क्या आपको पता है
अलग से अच्छा बेसे बच्चा बेसे प्यारा लगता है, अच्छा बच्चा प्यारा लगता है,
अच्छा बच्चा क्या करता है,
अच्छा बच्चा पढ़ता लिखता है।
सुनो बच्चों, उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता, जो लिखता है और जो है पढ़ता, वही बच्चा तो है आगे बढ़ता। पढ़ लिख कर खुद को और मुआशरे को संवारे।
पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक।
सुनो बच्चों, उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता, जो लिखता है।
सिर्फ एक नस्ल ठीक है जो हमारी नस्ल है।
सिर्फ एक जबान ठीक है जो हम बोलते हैं।
सिर्फ एक राय ही ठीक है और वो हमारी राय है।
क्या ये रवैया माशरे के लिए ठीक है?
नहीं, इख्तलाफ रहमत है, जिंदगी में रंग भरता है, माशरे में तनव्वो पैदा करता है।
इसे एक असासा समझना चाहिए। हर एक नस्ल, हर एक जबान, हर एक राय को एहतराम देना ही माशरे को अच्छा माशरा बनाता है।
पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक।
खेल फर्द की ताकत,
खेल फर्द की अखलाकी कदरों का मजहर,
खेल आलमी जबान,
खेल रुकावटों से मावरा,
खेल से समाज में तब्दीली,
खेल ही तरक्की और अमन के पयाम्बर,
खेलों के फरोग से मुआशरे में तरक्की, मुल्क पुरम।
पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान,
लोग रंग रंग,
बोलियां अलग अलग,
रहन सहन जुदा जुदा,
जैसे गुलशन में फूल दरख्तों पर परिंदे,
इसी फर्क में तो जिंदगी है, खूबसूरती है।
सब सोचों, सब रंगों, सब लहजों का एहतराम,
सबके इंसानी हुकूक का बराबर एहतराम होगा
तो सब एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे,
साथ चलेंगे एक मंजिल की जानिब,
सब एक होंगे।
पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक।
बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिना ने 1947 में फरमाया था कि हम इस बुनियादी उसूल के साथ इब्तिदा कर रहे हैं कि हम सब शहरी हैं और एक ही मुमलिकत के बराबर शहरी हैं। इसी तरह पाकिस्तान का आईन और बैन अल-अक़वामी मुआहदे जिनकी पाकिस्तान ने तौसीक कर रखी है मजहबी अकलियतों के हकूक की जमानत देते हैं, मगर किसी न किसी वजह से इस सिलसिले में शिकायत सुनने को मिल जाती हैं।
तालीम और मुलाजमतों तक रसाई में इंसाफ के तकाजे क्या हैं? बात करते हैं जनाब शफकतुल्ला से, अकलियतों के हकूक से मुतल्लिक केसेस की वकालत में वसीत तजर्बा रखते हैं।
अकलियती शहरी भी किसी भी दूसरे मुस्लिम शहरी की तरह उतने ही अहम और उतने ही लाजमी हैं, उतने ही मोतबर हैं। उनके हकूक, उनके जान माल भी उसी तरह मोहतरम और मोतबर हैं जिस तरह किसी भी दूसरे पाकिस्तानी या किसी भी मुस्लिम पाकिस्तानी के हैं। आइन के आर्टिकल 22 के तहत किसी भी फर्द पर यह पाबंदी नहीं है कि वो तालीमी अदारों में ऐसी दीनी तालीमात, तकरीबात और इबादत का हिस्सा बने जो उसके मजहब से ताल्लुक ना रखती हैं। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 36 के तहत रियासत अकलीतों के जायज हकूक और मफादात का तहफ़ करने और उनको सूबाई और वफाकी मुलाजमतों में मुनासिब नुमाइंदगी देने की भी पाबंद है। हकूमत ने गैर मुस्लिमों के लिए सरकारी मुलाजमतों में 5% कोटा मुख्तस कर रखा है, लेकिन हकीकी मानों में इस पर अमल दरामद नहीं होता। गैर मुस्लिमों को बाज़ुकात मुलाजमतें नहीं मिलती और अगर मिल भी जाएं तो तमाम कोटा निचली सतह की असामियाँ पुर करने के लिए ही मुकम्मल कर लिया जाता है। आला अहदों पर तकर्री और तरक्की का हसूल उनका ख्वाब ही रह जाता है।
और मुस्बत तब्दीली के लिए क्या तजवीज करते हैं?
कीदे की बजाय शहरियत की बुनियाद पर मुलाजमतों और तालीम के हसूल में इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए कोशिशें करना शायद बहुत आसान ना हो, लेकिन इसके लिए बहुत सारे इकदाम किए जा सकते हैं और किए भी जाने चाहिए। अगर कोई गैर मुस्लिम इम्तियाजी सलूक का शिकार होता है तो उसको चाहिए कि वो तमाम सबूत और शहादे इकट्ठे करके मुतलका तालीमी अदारे, दूसरे सरकारी अदारे या अदालत से रुजू करें, वहां दरख्वास्त दे और गैर इम्तियाजी सलूक के खात्मे का मुतालबा करे। दरसी कुतब से अकलीतों के खिलाफ नफरत अंगेज और दीगर काबिल एतराज मवाद निकालने के लिए मुतासरा मजहबी अकलीत के अफराद या दीगर शहरी इंसानी हकूक के अदारों और अदालतों से रुजू कर सकते हैं। तहकीक के जरिए अदम बराबरी या इम्तियाजी सलूक की सूरत में होने वाली नाइंसाफी को उजागर करना और मौजूद सिफारशात अरबाब इक्तदार तक पहुँचाना मुस्बत तब्दीली के लिए इंतहाई जरूरी है।
हमारे यहाँ जायदाद, जमीन पर नाजायज और गैर कानूनी कब्जा और जमीनों को छीनने के वाकयात भी सामने आते रहते हैं और इनका शिकार सिर्फ अकलियती शहरी ही नहीं होते, मगर आज बात इन्हीं अकलियती शहरियों की जिन्हें आसान शिकार समझा जाता है।
वतनी अजीज में अदम बर्दाश्त में हालिया दहाइयों में जो इजाफा हुआ है उसके बुरे असरात से कानून नाफिज करने वाले अदारे भी महफूज नहीं रह सके। زمین پر ناجائز قبضے سے متاثرہ اقلیتی برادری کے ارکان کے مشکلات ایسے ہی معاملات میں پھنسے دیگر شہریوں سے اس طرح مختلف ہیں کہ اقلیتی شہری بد قسمتی سے کئی دفعہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مقامی اہلکاروں کو مظلوم کی بجائے زمین ہتھیانے والوں کا ساتھ دیتے یا ان کی طرفداری کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں کئی اقلیتی برادریوں کی عبادت گاہیں اور مذہبی اہمیت کی دیگر جگہوں کا انتظام ایک قانون کے تحت متروکہ وقف املاک بورڈ کے زیر اثر ہے۔ یہ بورڈ ایک چیئرمین اور وفاقی حکومت کی طرف سے نامزد کردہ دیگر افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ متروکہ جائیداد سے متعلقہ تنازعات کی بابت سول کورٹ کو اختیار نہیں ہے، ایسے تنازعات کے حل کا اختیار ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ ہی بلا شرکت گہرے رکھتا ہے۔ چیئرمین اور دیگر ممبران بورڈ کو متروکہ وقف املاک کی بابت تمام عدالت اختیارات بھی حاصل ہیں۔
تحفظ کے اقدامات یوں تجویز کرتے ہیں۔
زمین پر قبضے کے ایسے واقعات میں قبضہ کرنے والے افراد متاثرہ لوگوں کو ڈرانے، دھمکانے، مار پیٹ اور جسمانی تکلیفیں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، اس لیے ایسے معاملات میں زندگی کا تحفظ سب سے پہلی ترجیح بن جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ ناجائز قابضین کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا جائے۔ ضروری ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے فوری رابطہ کیا جائے تاکہ ان کی بر وقت امداد حاصل کی جا سکے۔ موقع پر خاصی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کرنے سے بھی ناجائز قبضہ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے۔ ٹی وی چینلز اور اخبارات کو فوری اطلاع، اس بارے میں خبر کی تشہیر بھی ناجائز قابضین کو روکنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ اقلیتی شہریوں کی جائیداد یا مذہبی اہمیت کی جگہوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے یا قبضے کی کوشش کی گئی ہے یا ایسا کرنے کی دھمکی دی گئی ہے تو فوری طور پر پولیس سے رابطہ کر کے تمام تفصیلات کے ساتھ شکایت درج کروانی چاہیے۔ قانون اپنے ہاتھ میں لینے سے ہر صورت گریز کرنا چاہیے۔ وکیل، قانونی مشیر سے فوری طور پر مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورے کے مطابق متعلقہ عدالت یا متروکہ وقف املاک بورڈ سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ دیوانی عدالت یا متروکہ وقف املاک بورڈ ایسے ناجائز قابضین کو یا جائز قابضین کو بھی جنہیں قبضے کی شرائط و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہو جائیداد سے بے دخل کر سکتے ہیں اور بے دخلی کی کارروائی میں تمام ضروری طاقت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میڈیا کو اطلاع دینا بھی اس سلسلے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ معاملہ کو اس طرح اجاگر کرنے سے بھی بعض دفعہ قبضہ مافیا کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ دیوانی عدالت میں 1877 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت قبضہ کی بازیابی کا دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے۔
اقلیتی شہریوں کے حقوق، یہ تھے لاہور ہائی کورٹ کے وکیل شفقت اللہ۔
انسانی حقوق کے موضوعات پر مضامین اور پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کی سرگرمیوں کی رپورٹس کے لیے پڑھیے ہمارا ماہنامہ جہد حق۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کا پروگرام آپ ہر ہفتے اور اتوار کی دوپہر 12:30 بجے سنتے ہیں۔ آپ کی رائے، آپ کے تبصرے ہمیں اس پروگرام کو بہتر بنانے میں مدد دیں گے۔ ہمیں ای میل کریں hrcpradio@gmail.com یا خط لکھیں اس ایڈریس پر بات حق کی، پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق، 107 ٹیپو بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور۔
پروگرام کے پروڈیوسر سعادت علی خان اور مجھے وقار مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔